नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। नई दिल्ली के भारत मंडपम में निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह सम्मेलन 27 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग के बीच समन्वय जरूरी है। सम्मेलन में सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्य चुनाव आयुक्तों के कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में अपने अपने कानूनी प्रारूप के तहत भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के कामकाज में तालमेल को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन रचनात्मक विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा, साथ ही चुनाव प्रबंधन में सहकारी संघवाद की भावना को सुदृढ़ करेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद की रोकथाम और आतंकी गतिविधियों को धन मुहैया करने के खिलाफ नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किया। ये रणनीति आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक व्यवस्था प्रस्तुत करती है। इसमें आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि हालांकि खतरों का स्वरूप लगातार बदल रहा है और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, फिर भी देश सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के 4 दिन की यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मुंबई के लोकभवन में पीडी हिंदुजा अस्पताल द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाओ और स्वच्छ भारत बनाओ का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की इसराइल यात्रा पर कल रवाना होंगे। तेल अवीव में प्रधानमंत्री इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। इसके बाद श्री मोदी यरूशलम में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उधर यरूशलम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री जेपी सिंह ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और इसराइल एकमत हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट के समय दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा ऐतिहासिक सिद्ध होगी।
प्राइम मिनिस्टर विल बी एड्रेसिंग
कनेसेट। प्रधानमंत्री मोदी इसराइल की संसद कनेसेट को संबोधित करेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाने वाला पहला संबोधन होगा। कनेसेट के माध्यम से प्रधानमंत्री इसराइल और साथ ही भारतीय नागरिकों को भी संबोधित करेंगे। मुझे लगता है कि पूरा इसराइल इसे देखेगा और उनका भाषण सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित होगा।
विल फोकस ऑन वेरियस एरियाज ऑफ कोऑपरेशन।
श्री सिंह ने कहा कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से वार्ता के अलावा श्री मोदी इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि भारत और इसराइल की आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी नीति है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्क तहक्सना और वहां के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। खाड़ी सहयोग परिषद GCC के महासचिव जासिन मोहम्मद अल बुदैवी आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी यात्रा से भारत और GCC के ऐतिहासिक संबंध और मजबूत होंगे। अमेरिका के विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि ईरान को लेकर बढ़ते तनाव और संभावित सैन्य हमले की आशंका के मद्देनजर अमेरिका ने बेरूत स्थित अमेरिकी दूतावास में तैनात गैर जरूरी राजनयिक और उनके परिवार के सदस्यों को लेबनान छोड़ने का आदेश दिया है। इस बीच ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कहा कि अमरीका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर अगली वार्ता बृहस्पतिवार को जेनेवा में होने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन और गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। घरेलू शेयर बाजार का संविदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज शुरुआती कारोबार में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 800 से अधिक अंक लुढ़ककर 82,500 पर, जबकि निफ्टी 230 अंक के अधिक गिरावट के साथ 25,500 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।